Namaste. So we start a new book today from Savitri. As we know, there are 12 books. So book 10, the book of the double twilight. So what really is a twilight? Twilight kya hai? Twilight wo vela hai jahan par saanj savere milte hain. Wo gana hai na, jab saanj, jahan saanj savere milte hain. तो सांझ और रात, रात और दिन जब मिलते हैं, ये दो बेला में मिलते हैं और वो बड़ा सांकेतिक है. एक सुबह सुबह भोर के समय, और भोर के समय क्या होता है, जो फोर्सेस ऑफ लाइट हैं, प्रकाश की जो शक्तियां हैं, वो ऊपर की ओर जा रही होती हैं और अंधेरा पीछे की ओर जा रहा होता है, लेकिन वो ट्वाइलाइट जोन है. और दूसरा, इसको बड़े, इस पर तो सीरीज बनी है, पिक्चरें बनी हैं, जनरली इन्हें नेगेटिव सेंस बनी है. ट्वाइलाइट जोन उसको भी कहते हैं जहाँ डेड और लिविंग कंफ्यूज हैं कि हम मर गए हैं या जीवित हैं, एक ऐसी वो कैटेगरी है. तो ट्वाइलाइट जोन एक प्रकार का ऐसा जोन है जहाँ एक सर्टेनिटी नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ पे. तो एक भोर का समय है, अगर आप प्रतीक्षा करें तो प्रकाश की शक्ति आ जाती है, देन इट इज नो मोर ट्वाइलाइट, इट इज डे. और दूसरा ट्वाइलाइट जोन है जो गोधूली का समय, जब सांझ हो रही है और प्रकाश पीछे जा रहा है और रात की शक्तियां एसेंडेंट पर है. तो ये दो ट्वाइलाइट्स, डबल ट्वाइलाइट सांकेतिक हैं. एक ट्वाइलाइट जोन वो है जहां पर नवजीवन की शक्तियां जन्म ले रही हैं, और वो कहां है, माइंड के आइडियलिज्म में. जैसे हम लोग कुछ देर पहले बात कर रहे थे, माइंड क्या कल्पना करता है, माइंड कल्पना करता है एक स्वर्ग की, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, आंसू भी ना हो, गम भी ना हो, जहां प्यारी प्यार पले. ये सब आप देखें यंग एज में, यूथफुल एज में ये आइडियलिज्म लेके लोग आते हैं, और वो कहां से इंस्पायर होता है, एक पूरा जोन है, हेवन है, स्वर्ग है, जहां यही सारी शक्तियां रिलीज की जा रही हैं. और कुछ मानव मन ग्रहणशील है, वो उसको पकड़ते हैं कि हाँ, जीवन सुंदर होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. माता जी कहती हैं कि रोज हम लोगों को 5-10 मिनट स्मरण करना चाहिए, इस बात का सोचना चाहिए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, प्रेम घृणा में क्यों बदल जाता है, यदि जीवन है तो मृत्यु क्यों आ जाती है. ये सारी चीज़ों पर हमें एक प्रकार का चिंतन मनन करना चाहिए. तो इस प्रकार से एक ट्वाइलाइट का जोन है जहां अंधकार के अंदर से प्रकाश की शक्तियां जन्म लेके धरती की ओर आ रही हैं, और हमारे ही अंदर कोई हायर माइंड, कोई उच्चतम भाग उनको पकड़ता है और उन उसकी ज्योति से पोषित होता है. ये तो है पहला ट्वाइलाइट, जिसको शेरविन कहते हैं आउटब्रेक, ए डे ऑफ द गॉड्स, आउटब्रेक ऑफ द गॉड्स, जब दिव्य उड़ जाएं. फिर दूसरा ट्वाइलाइट क्या है, जो माँ बाप बताते हैं ये सब ठीक है लेकिन जिंदगी तो अलग है. आटे दाल का भाव अभी तुमने देखा नहीं है, ये सब कल्पना का जगत है, इसमें मत रहो, रियल लाइफ कुछ और है, रियल लाइफ में ये चीजें नहीं चलती हैं, ये सब कल्पना के जगत में चलती हैं. फिर आगे कहते हैं, हम भी जब तुम्हारी उम्र के थे तो ऐसा सोचते थे, पता नहीं सोचते थे कि नहीं पर सोचते थे, लेकिन ऐसे दुनिया नहीं चलती. अब यहां पर कौन सी ट्वाइलाइट है, इट इज क्रैशिंग इन टू अर्थ. तो एक ट्वाइलाइट, जो भोर की ट्वाइलाइट कहां से प्रारंभ होती है, आकाश से प्रारंभ होती है, आउटब्रेक ऑफ द गॉड्स. और ये जो सांझ की ट्वाइलाइट है वो कहां समाप्त हो रही है, धरती. अंतिम जो पॉइंट होता है ना शाम का, ऊपर में सारा सूरज डूब गया है लेकिन उसकी रोशनी सिमटती सिमटती अंत में धरती के ऊपर चली जा रही है, समाप्त हो रही है. माने धरती उस चीज सत्य को ग्रहण नहीं कर पा रही है. संकेत यह है कि वो प्रारंभ वहां से होता है लेकिन धरती उस ट्रुथ को धारण नहीं कर पाती है, और इसलिए वो ड्रीम्स हमारे क्रैश कर जाते हैं. बहुत कम लोग हैं जो जीवन भर इस स्वप्न को लेकर चल सकते हैं. वास्तव में वही माननीय, आदरणीय है, बाकी तो सब खेल तमाशा है. तो अब इस दृष्टि से हम देखें तो डबल ट्वाइलाइट क्या है. पहला है ट्वाइलाइट, द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल, ये पहला कैंटो है. वहां से आउटब्रेक हो रहा है गॉड्स का, और मृत्यु कहती है, यम कहते हैं सावित्री को, कहते हैं मुझे पता है तुम यहां से पोषित हो रही हो, कि वो लेके जा रहे हैं ना, वो सारा सर्किट हो रहा है. तो कहते हैं कि मुझे पता है तुम ये जो कह रही हो ना आदर्श प्रेम इत्यादि, यहां से आ रहा है, ये तो वास्तव में देवताओं को भी पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। मनुष्य के अंदर आदर्श स्थापित हो सकता है कभी? तो हम लोग देखते हैं गॉस्पिल ऑफ डेथ एंड द वैनिटी ऑफ द आइडियल। देखिए इसके जो सारे कैंट है ना, बड़े डिबेट होगा और गॉस्पिल होगा। तो ये बुक 10 में पहला है द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल, एक स्वप्न। हम सुबह उठते हैं ना स्वप्न के साथ उठते हैं, तो वैसे ही जब एडोलेसेंस में हर कोई व्यक्ति जो थोड़ा भी मनुष्य है तो एक स्वप्न लेके पैदा होता है। जब मनुष्य नहीं है वो तो फिर बिना सींग वाला, बिना पूंछ वाला, मम्मी खाना दो मुझे भूख लगी है, जॉब कर ले 99.9% आगे, तो वो तो एक अलग हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं, हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा है द गॉस्पेल ऑफ डेथ एंड वैनिटी ऑफ द आइडियल। तो मृत्यु क्या, यम क्या कह रहे हैं कि ये सब जो तुम देख रही हो ना, चमक रहा है सत्यवान यहां पर, ये कुछ चमक बहुत देर तक रहेगी नहीं। ये जिसको तुम प्यार कह रही हो वो एरोटिक ग्लैंड्स हैं, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। मनुष्य इस प्रकार से स्वयं को धोखा देते हैं। फिर तीसरा होता है द डिबेट ऑफ लव एंड डेथ। अब सावित्री उत्तर देती हैं। अब वो उत्तर देते देते वो यात्रा कर रहे हैं, अंत में मृत्यु सावित्री को खींचकर अपनी गुफा की ओर ले जा रहा है। वो कहता है चौथा कैंटो है द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द अर्थली रियल। वो कहता है सावित्री ये सब हो गया डिबेट, बहुत अच्छी बात है जो भी हमारा स्कोर हुआ, लेकिन देखो धरती पर रियलिटी क्या है। सुनेंगे आप ऐसे लोग, वो सब ठीक है माँ शेरविंद ने कहा है, लेकिन रियल लाइफ को देखो प्लीज, समझ जाइए कि मृत्यु उनके मुख से, इनकॉन्शियंट भी मनुष्य के मुख से बोलता है और देवता भी मनुष्य के मुख से बोलते हैं। तो अब आपका को डिसीजन लेना है कि किस तरफ। तो ये जो इनकॉन्शियंट ऐसे ही बोलता है मनुष्य के मुख से कि वो तो चले गए, अब क्या है संसार में, थोड़ी कोई सुपरामेंटल वर्ल्ड कहां दिखाई दे रहा है। एग्जैक्टली डेथ ऐसे ही बोलता है कि क्या कभी भगवान किसने देखा कहां पर, आप कह रहे हो सुपरामेंटल बीइंग आएगा कहां पर आएगा, क्या प्रमाण है। तो सावित्री उत्तर देती है ना कि जड़ तत्व के अंदर एक पौधा आ जाता है, पौधे के अंदर प्राण आ जाता है, प्राण के साथ में विकास होता है, बीस्ट आता है, एप आता है, मनुष्य आता है, मनुष्य के अंदर अभिप्सा जागती हो, पूरा डिबेट में आता है। लेकिन वो प्रारंभ में मृत्यु यम ये बताते हैं सावित्री को, देखो जो लोग आइडियल ड्रीम करके आए थे उनके साथ मैंने क्या किया है। तो सावित्री को एक ऐसे कोष्ठ में ले जाते हैं कि ऐसे स्थान पर जहां वो बड़े बड़े रिवोल्यूशंस प्रॉफिट्स जिन्होंने क्या क्या नहीं देखा था वहां पे उनके स्वप्न तोड़ करके रखे हुए, जिसको कहते हैं ना पंख काट दिए, कौन सा एक गाना भी था ना, उड़ा परिंदा पंख कट गया नीचे आ गया, हाँ टूटा टूटा एक परिंदा। तो अब ये जो मनुष्य का जीवन, सारी समस्या यही है कि क्या आइडियल सच में गलत है। मृत्यु ये कहना चाहती है कि गलत है, क्यों गलत है, आज तक कभी स्थापित नहीं हुआ। अब मनुष्य की समस्या यह है कि वो गलत अगर मान भी ले तो वो स्वप्न लेके पैदा हुआ है, क्यों, वो स्वप्न उसके चैत्य में ही एम्बेडेड है, जैसे जैसे विकसित होगा उसके अंदर वो स्वप्न बढ़ेगा। आप यू कांट हेल्प इट, हम चाहें भी तो हम कितना भी आपके जीवन में देखिए आपने कोई प्रयास किया किसी भी जीवन की किसी अवस्था को सुंदर बनाने का, फेल हो गए, क्या गिवअप करते हैं, नहीं गिवअप करते हैं। कुछ समय के लिए एक होता है अवसाद का पीरियड जब वाइटल बीइंग कहता है अरे कोई फायदा नहीं, कुछ समय बाद फिर वो निकल पड़ता है, बिकॉज ये आइडियल नहीं मर सकता है। जैसे आइडिया को आप मार नहीं सकते हैं, वो एक लोगों को आप हटा सकते हैं लेकिन आइडिया को और आइडियल को नहीं मार सकते हैं। वो नए नए रूप नए नए शरीर लेकर धारण करता है और उड़ता है, और इसका जीवंत उदाहरण है। अब अगर हम देखें किसी भी चीज को, एक छोटा सा चीज ले लें, आज स्पेस एज है, तो स्पेस एज का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। अब वैसे तो वाल्मीकि ऋषि हम ये कहेंगे कि पुष्पक विमान को, अब लोग कहते हैं कल्पना, अरे कल्पना भी की इतनी अच्छी, तब तो मैं कहूँगा क्या अद्भुत कल्पना है, किसी ने 4-5 हजार वर्ष बाद होने वाली घटना को कल्पना में देख लिया है, तो इट शोज हिज पावर कि उन्होंने ये कल्पना कर दी उस समय जब मोटर कार भी नहीं है। अब देखिए रामायण में मोटर कार का भी वर्णन नहीं आता है, लेकिन जहां मोटर कार नहीं है, जहां रेलगाड़ी नहीं है, वहां उन्होंने पुष्पक विमान तो देखा जाए तो इट स्पीक्स हाईली. हाँ, ये कल्पना रह जाती अगर ये सिद्ध नहीं होती. द फैक्ट दैट इट हैज हैपेंड मींस वाल्मीकि ऋषि ने बहुत दूर भविष्य को रिलीज कर दिया था, क्योंकि देखा जाए ये कहा जाता है कि रामायण में उन्होंने वास्तव में भविष्य को ये राम की लीला होने के पहले देखा है. एक इसके बारे में ये कहानी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है. तो वाल्मीकि ने भविष्य दृष्टाएं, जैसे शेरविंद ए विजन ऑफ साइंस में कहते हैं कि मैंने देखा 100 साल आगे की प्रोग्रेस, मनुष्य ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, नीचे फैदम कर लेगा, आकाश में चला जाएगा, ये सब एक पूरी उन्होंने देखी. तो अब उन्होंने बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, मोटरगाड़ी की कल्पना नहीं करके सीधा ये क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि उसमें ये सब प्रोसेस निहित है. ये सब स्टेजेस आएंगी आएंगी. कैसे प्रारंभ हुई थी आकाश मंडल की यात्रा? जब वो एक व्हील इन्वेंट हुआ था. अब देखिए कैसे, अब वाल्मीकि ने सीधा क्यों पुष्पक विमान की बात की, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट इसमें. द मोमेंट यू स्पीक अबाउट एयर ट्रेवल तो आपने सारी चीजें इंक्लूडिंग मोबाइल एवरीथिंग उसके अंदर आ गई है. तो अब उन्होंने, हम देखते हैं कि सारा वो टेक्नोलॉजी का विकास कैसे होता है, एक साइकिल के पहिए का व्हील. इट वॉज अ रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी जब हुई थी, क्योंकि इसने चेंज कर दिया पूरे आने वाले भविष्य को. व्हील से प्रारंभ होता होता ऊर्जा, ऊर्जा के स्रोत अलग अलग करते हुए फिर वाल्मीकि जी के सत्य को कैप्चर किसने किया? लियोनार्डो डा विंची. और उन्होंने फिर कहा कि उड़ाया जा सकता है. वैसे बीच में भारद्वाज ऋषि भी हैं, हमारे भारतवर्ष के तालपत्र जी भी हैं. तो ये सारी चीजें कुछ लोगों ने इसको कैप्चर किया, इस ड्रीम को. और सब लोग क्या कहते थे, देखो ये सब बेकार की बातें, ये थोड़ा ज्यादा सोचते हैं. रियल लाइफ भला ऐसा हो सकता है मनुष्य उड़ेगा? होता रहा, ये चलता रहा उसके और 200-300 साल बाद. राइट ब्रदर्स ने जब इसको बनाने की चेष्टा की, जहाज वो पहला उड़ने वाला, उनके अपने पिता ने उनको डिसोन कर दिया. क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से ये तो संभव नहीं है, क्योंकि जो बाइबल में नहीं है वो प्रीस्ट थे. जब बाइबल में नहीं है वो कैसे संभव है? वैसे ही चार्ल्स डार्विन के साथ हुआ. बेचारे इतने दुख में मरे, मतलब वो बहुत प्रेम करते थे अपनी वाइफ को और वाइफ भी बहुत प्रेम करती, लेकिन ये डिस्कशन नहीं होता था क्योंकि इवोल्यूशन की थ्योरी तो बाइबल को चैलेंज करती. तो वो इतने परेशान थे कि मैं घर में बात नहीं कर सकता हूं इसकी. बाहर भी उनको बड़ी चैलेंजेस हुए. तो उस समय में हर व्यक्ति ने उसको अस्वीकार किया. कभी कभी ये देखते हुए लगता है कि जो चीज सब लोग कर रहे हैं वो निश्चित रूप से गलत है. समटाइम्स यू ड्रॉ दिस कंक्लूजन लुकिंग एट लाइफ दैट प्रोबेबली व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग इज श्योर टू बी रॉन्ग, क्योंकि ये जो है वो मास मूवमेंट है. और अगर आप नेचर में भी देखो, नेचर क्या करती है? हर्ड मेंटेलिटी से इंडिविजुअलिटी की ओर जाती है. जाती कि नहीं जाती? इवोल्यूशन इसी दिशा में होता है ना. तो जहां पे लोग केवल इसलिए चीजें करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं और सब कह रहे हैं, तो आप जरा सचेत हो जाइए कि सब कह रहे हैं और सब कर रहे हैं, इन लोगों ने तो जहाज को भी नहीं आने दिया होता. और कोई भी चीज जो संसार में गिफ्ट मिली है वो उन लोगों के कारण आई है. श्री अरविंद कहते हैं कि जीनियस ब्रेक्स द मोल्ड, वो ब्रेक्स द कन्वेंशंस, ब्रेक्स द मोल्ड. वो जब कर देता है तो बाद में सब लोग उसके फॉलोअर बन के पहुंच जाते. कहते हैं हाँ, हम तो जानते थे वो सही था, लेकिन उस समय पीपल रिगार्ड हिम एज ए मैड मैन. तो अगर लोग आपको पागल समझते हैं इस कारण, वैसे नहीं. तो मतलब कहीं ना कहीं एक जीनियस का स्ट्रीक है. तो अब इसी प्रकार से, इसी दिशा में अगर हम देखें तो श्री अरविंद कहते हैं एक नया जगत आएगा. सावित्री इज रिलेटेड विद दैट. हम मृत्यु पर विजय पाएंगे, हम मनुष्य के अंदर से एक नया देह प्रकट होगा. इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में तो ये लॉजिक ऑफ थिंग्स में इनहेरेंट है. और मनुष्य लांग जाएगा इस सीढ़ी को जहां वो रोग इत्यादि से जकड़ा हुआ है, प्रोवाइडेड हमारे सर्जन्स आकर कृमि कीड़े का खोल ना काट दें. लगे हुए हैं लोग उसमें, फ्री टीवी, फ्री राशन, फ्री वैक्सीन सब. अंत में आप बचेगा कुछ नहीं, मनुष्य कहेगा सब फ्री मिल रहा है, मैं बैठा रहता हूं. और इवोल्यूशन रुक जाएगा, रुकेगा नहीं, क्योंकि कुछ रहेंगे हमेशा सिर फिरे. वही कुछ लोग होते हैं जो इवॉल्व करते हैं, ये प्रकृति का ये नियम है. ऑलवेज इट इज लाइक दैट. द masses ऑलवेज कोलैप्स बैक. तो यही चीज बार बार यम सावित्री को बताना चाह रहे हैं. तो ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल में सावित्री जब प्रवेश कराया उन्होंने कहा घुप अंधकार में, टुवर्ड द इटर्नल लाइट नाइट. और उस महाअंधकार में सबसे पहली जो किरण आती है द ड्रीम ट्वाइलाइट ऑफ द आइडियल. जब अंधेरा बहुत घना हो जाए तो क्या कहना चाहिए, बहुत करीब है प्रकाश. तो हम देखते हैं कि वहां पर एक आउटब्रेक होता है पहले प्रकाश की किरण का. और वहां श्री अरविंद हम लोगों को बहुत अद्भुत पावरफुल लैंग्वेज है, वो तो सब जगह है, लेकिन इसमें एक महान सत्य को हमारे सामने उद्घाटित करते हैं. रोज सुबह ये सत्य हम देखते हैं और रोज रात को हम भूल जाते हैं. कई बार बच्चों से बात होती है तो पूछता हूँ कि अच्छा आज क्या सीखा तुमने, तो क्या होता है कि आजकल देखो ये क्या हुआ एजुकेशन का. पहले क्या सिस्टम था एजुकेशन का, गुरुकुल का सिस्टम ऐसे नहीं था जो दिखाते हैं तख्ती लेके बैठ जाओ और आप प्रकृति से सीखते थे. अब क्या हो गया, डिजिटल सारे उत्तर आपको दे दिए गए, बच्चों के पास क्वेश्चन ही नहीं है. उनको ये भी नहीं पता कि ये उत्तर क्यों आया है. सीधा फीड कर दिया आपने न्यूटन की लॉ, पहली लॉ क्या होती है, दूसरी लॉ क्या होती है, तीसरी लॉ क्या होती है. उनको उसका एक बहुत सुंदर जोक भी था कि किसी ने कहा जज ने कि आपने इस व्यक्ति को मारा है, तो वो लेडी कहती कि मैंने नहीं मारा है, नेचुरल कॉजेस से मारा है. नेचुरल कॉजेस से कैसे मारा है, आपने धक्का दिया था इसको. हाँ लेकिन ग्रेविटी तो नेचुरल है. धक्का मैंने दिया था, बाकी तो ग्रेविटी ने काम किया. तो ये एक मतलब किस हद तक हमारी क्षमता जा सकती है. तो हम नॉर्मली देखते हैं कि अंधकार, अंधकार से सूरज निकलता है. तो अब इस घटना को जो हम रोज देखते हैं, अगर बच्चों से हम लोग पूछें कि अच्छा बच्चे आज क्या देखा तुमने सुबह उठते ही, अंधकार था, कल रात को सोने गए थे, सुबह सूरज देखा, अब बताओ इससे क्या सीखा. तो आप देखते हैं प्रकृति में ये लेसन्स हैं. जैसे फूल, माता जी ने फूल का कहा है, फूल को देखकर क्या लेसन मिलता है, फिर नदी को देख के क्या लेसन मिलता है. पहले हम प्रकृति से सीखें, धरती माँ को देख के क्या लेसन मिलता है, आकाश में विविध छटा को देखकर, रेनबो देखकर, हर चीज से लेसन मिलता है, केवल किताबों से नहीं मिलता है. किताबों में तो वो बंद हो जाता है. तो यहाँ पर इसमें हम एक पैसेज पढ़ेंगे, लेकिन ये स्टार्ट होता है ऑल स्टिल वॉज डार्कनेस ड्रेड एंड डेसोलेट, देर वॉज नो हो, देर वॉज नो चेंज नॉर एनी होप ऑफ चेंज इन दिस ब्लैक ड्रीम विच वॉज ए हाउस ऑफ वॉइड. ए वॉक टू नो वेयर इन ए लैंड ऑफ नॉट एवर दे ड्रिफ्टेड विदाउट एम और गोल. ये सबसे भयानक अवस्था अगर मनुष्य की होती है तो लक्ष्यहीन उद्देश्यहीन जीवन, इट इज द मोस्ट मिजरेबल लाइफ. कि हमें ये नहीं पता कि हम कहां जा रहे हैं. अगर सोचो आप स्टेशन पे खड़े हो और कोई पूछे कि कहां जाना है, आप बोलो पता नहीं कहां जाना है, तो फिर क्या करोगे आप, जो गाड़ी आएगी हम बैठ जाएंगे. कौन सी गाड़ी में, जो पहले आ जाएगी, पहले मतलब हाँ जिसमें लोग चढ़ रहे होंगे उस डिब्बे में चढ़ जाएंगे. आप पूछोगे नहीं कहां जाना है, अब वो जा रहे हैं, लोग भी तो जा रहे हैं, हम भी वहीं चले जाएंगे. हम रियल लाइफ में ऐसे ही करते हैं ना. ये कहानी कितनी एब्जर्ड लगती है, लेकिन रियल लाइफ में हम यही करते हैं. ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि उनका जीवन क्यों है, चले जा रहे हैं भीड़ में, कहां जा रहे हैं, जहां सब जा रहे हैं. वो देखो हमारे दादा दादाजी, उनके दादा पूर्वज तो अल्टीमेटली बंदर थे. पूर्वजों को ही फॉलो करना है तो बंदर हम बने. एक वो थे ना अपने बाबा आमटे, उन्होंने श्री अरविंद को पत्र लिखा था ना, आई हैव मेंशन दिस अर्लियर आल्सो. करोड़पति हैं लेकिन लेप्रोसी के लोगों को इलाज करना चाहते हैं, आनंदवन बनाया उन्होंने, सब घर में अगेंस्ट इसके. तो उन्होंने पूछा कि आप श्री अरविंद से कि मुझे क्या करना चाहिए, संसार के सब लोग तो मुझे इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं. श्री अरविंद का लेटर वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स आई हैड हर्ड ऑन रेडियो. अचानक बाबा आमटे, उसमें श्री अरविंद और नए नए में श्री अरविंद से सब जगह से श्री अरविंद आ रहे थे, तो वो चीज फट से आपके पूरे कान अटेंटिव हो जाते हैं. तो श्री अरविंद ने लेटर में उनको लिखा, व्हेन यू टर्न योर बैक टू द वर्ल्ड विल फॉलो यू. आप देखिए सबके, मीराबाई टर्नड हर बैक टू द वर्ल्ड. बुल्ले शाह टर्नड इज बैक टू द वर्ल्ड. बुल्ले शाह तो प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार के थे और वो चाहते हैं ज्ञान मिले. तो लोगों ने कहा आपको ज्ञान की क्या जरूरत है, आप तो वंशज हो, तो नहीं ज्ञान वंश से नहीं मिलता है. तो पीपल ट्राई टू यू नो डिसवेड हिम कि क्या बेइज्जती होगी कि आप जा रहे हो ज्ञान लेने के लिए. तो जाते हैं वो किसान हैं उनके गुरु, कहते हैं कि मुझे ज्ञान चाहिए. तो कहते हैं ये तो बहुत सिंपल है, ऐथे चुक ओथे रख. क्या मतलब, यहाँ देख नहीं रहा मैं क्या कर रहा हूँ, दाद यहाँ से निकाल रहा हूँ वहाँ रख रहा हूँ. कहते क्या, कहते हैं अवेयरनेस. संसार से उठाओ और भगवान में लगाओ. ऐथे चुक यहाँ से उठा लो वहाँ लगा दो. इतना सिंपल है. दैट चेंजेस. श्री कृष्ण को देखिए आप, उनके जीवन में एक चीज वैसी नहीं है जो उन्होंने लीक पर चल के की है. वो सारी चीज जो यहां तक कि भीष्म द्रोण कह रहे हैं, श्री कृष्ण उसके बिल्कुल अगेंस्ट. अर्जुन को देखिए, एक और उनकी नारायणी सेना है, एक और श्री कृष्ण है निहत्थे अकेले. जिसने भी संसार में, श्री अरविंद को स्वयं देख लीजिए, श्री अरविंद स्वयं कहते हैं कि अगर मैं फ्रीडम मूवमेंट में रहता तो उनका भी नाम आता बाद में, फादर ऑफ द नेशन. वो तो सारी सृष्टि के पिता बन गए. माता जी, कोई एक चीज, ये जो भी वो करते हैं. तो यहां घना अंधकार है, जहां होप नहीं है, चेंज की होप नहीं है. एवर दे ड्रिफ्टेड विदाउट एम और गोल. ग्लूम लेट टू वर्ड्स ग्लूम, डेप्थ टू एन एम्प्टीअर डेप्थ, एंड थ्रू फॉर्मलेस वाटर्स डम्ब एंड अनोएबल. तो इस प्रकार से जब वो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अचानक श्री अरविंद जस्ट लाइक एक देववाणी प्रकट करते हैं, उद्घाटित करते हैं एक महान सत्य जो हमें सदैव विचारनी है. इस पूरे कैंटो में बस हम ये पैसेज पढ़ेंगे. वहां क्या प्रतीति हो रही है, पहले ये, ए ग्रेट नेगेशन वॉज द रियल फेस प्रोहिबिटिंग द वेन प्रोसेस ऑफ टाइम. एंड वेन देर इज नो वर्ल्ड नो क्रीचर मोर, वेन टाइम्स इंट्रूशन हैव बीन ब्लॉटेड आउट, when time's intrusion has been blotted out, it shall last unbodied, saved from thought, at peace. Nothingness se sansar up jaye aur wapas nothingness mein chala jayega. Satya to yahi hai, aisa hum log sunte hain. Shervin nahi, ab Shervin isme master stroke layenge. Ab wo kehte hain, but maya is a veil of the absolute, uska mukh ek jyot hai, ghoongat ye sansar. घूंघट तो सत्य नहीं है, घूंघट में वो छुप गया मुख पर आंचल डाल. अब ये क्यों डाला है घूंघट, ताकि हम धीरे धीरे घूंघट जब उठाते हैं तो हम तैयार होते हैं, लाइक एनी अदर घूंघट. तो ये जो मॉडर्न टेंडेंसी है ना, ऑल नो घूंघट नथिंग, तो देर इज नो जॉय एंड चार्म लेफ्ट. अब देखिए घूंघट का, मैं ये नहीं कहता हूं कि घूंघट रहना चाहिए, बट लुक एट द घूंघट. घूंघट क्या सिंबल है, प्रकृति का सिंबल है. प्रकृति आपको अपने रहस्य इजली नहीं बताती है. आप देखिए कहते हो ये तो पेड़ है, बहुत अच्छा पेड़ है, आप यही समझते हो ना. प्रकृति कहती है ठहरो, एक घूंघट उठाओ, तो आप एक आवरण उठाते हो, आप देखते अरे इसके अंदर तो क्या सुंदर रूट्स हैं, ये संचार हो रहा है बहुत सुंदर. फिर और घूंघट उतारते उतारते आप अंत में कहते हो अरे ये तो वट वृक्ष है, श्री कृष्ण ने तो कहा था कि मैं हूं इसके अंदर. अंत में आप क्या देखते हो कि ये वृक्ष नहीं है, ये तो श्री कृष्ण है जो वृक्ष बनकर अपनी बाहों को लेके खड़े. तो ये जो घूंघट का जो एस्पेक्ट है, इट्स प्रकृति. सो प्रकृति स्टेप बाय स्टेप रिवील्स हरसेल्फ. सो माया क्यों बनी है ये वेल, ताकि हम तैयार हों एब्सोल्यूट के लिए. अगर हम एब्सोल्यूट के लिए तैयार नहीं होंगे, इमेजिन आप डायरेक्टली डिवाइन मदर से फेस टू फेस हो गए. शेरविन देख जाए कहते हैं कि ऑथर्स ऑफ द अर्थ हाई चेंज टू यू इट इज गिवेन टू मीट द मदर द डिवाइन मदर स्टार्क एब्सोल्यूट. ये मनुष्य को दिया गया है, लेकिन अगर अचानक ये डिस्क्लोजर होगा तो हम सहन नहीं कर पाएंगे. ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी कठिन होता है. तो भगवान ने अपने आप को बहुत सारे घूंघट में छिपाया हुआ है, वेल ऑफ द एब्सोल्यूट. एक उठाइए आपको लगता है भगवान मिल गया, क्या मिले आपको, कॉन्सेप्ट्स मिले. दूसरा उठाइए मिल गया, रिलीजन मिला, उसको भी उठाइए फिलॉसफीज मिली, उसको भी उठाइए कहीं साइंस भी इधर उधर घूम रही है घूंघट उठा करके. उसने भी एक साइड में मुखौटा. आप करते जाइए करते जाइए, अंत में कहते हैं अब तो तैयार है. हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूं बेयर हिज बॉडी ऑफ ब्यूटी एंड ब्लिस. क्या हम तैयार हैं? इसलिए माया इज ए वेल ऑफ द एब्सोल्यूट. ए ट्रूथ ऑकल्ट हैज मेड दिस माइटी वर्ल्ड. ये संसार माया ने नहीं बनाया, किसी छलना ने नहीं बनाया है. ए ट्रूथ ऑकल्ट द इटर्नल्स विजडम एंड सेल्फ नॉलेज एक्ट इन इग्नोरेंट माइंड एंड इन द बॉडी स्टेप्स. एक बार किसी ने बताया कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती कंसल्ट करने के लिए कि भाई मैं तो जैसे ही पांडिचेरी के बाहर जाती हूँ मुझे भूत पकड़ लेते हैं, केवल पांडिचेरी आने से मैं फ्री हो जाती हूँ. तो अब वो साइकोलॉजिकल उसका उसके पीछे मैं नहीं जा रहा हूँ. तो बड़ा देखिए भूत भी बड़ा कन्वीनियंट है कि वो भगा रहा है. तो वो कई बार ऐसा कर चुकी हैं. तो मैंने कहा देखो कितना अच्छा भूत है, आपको यहाँ ले आया. यानी देखो तो भूत ने वो कर दिया जो आपको बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए. ये एक छोट नारायण जी इसको अपनी कहानी के रूप में कहते थे कि एक पथिक बैठता है, बैठ जा रहा है रास्ते में, तो अचानक एक सांप मिलता है और वो सांप उसको डस लेता है, उसके शरीर पॉइजन आ रहा है. तो ढूंढ रहा है कि कोई मुझे बचा ले बचा ले बचा ले, विषधर नाग ने. तो एक कहता है भैया ये सांप कहाँ से आया है, वहां जाओ तो तुम्हें इसका इलाज मिलेगा. तो कहते कहाँ से आया, देखा नहीं है शिव जी के गले में है, वही है ना, उन्होंने हलाल पिया हुआ है. तो जहां से इसकी ओरिजिन है वही इसका हल है. तो मनुष्य को जो ये पीड़ा कष्ट है उसका अंतिम हल भगवान के ही पास है. आप यू मे ट्राई एनीथिंग, फिजिकल बॉडी का अगर फाइनल कंज्यूमेशन है तो डिविनाइज्ड बॉडी में है. देयर इज नो अदर परमानेंट सॉल्यूशन. क्योंकि ओरिजिन कहां से, इवन मैटर का वहीं से ओरिजिन है. तो जब तक मैटर डिविनाइज नहीं होगा आप कितनी भी कोशिश कर ले. अब हम देखें मेडिकल साइंस क्या कर रही है, आपको उस दिशा में नहीं ले जाने दे रही है. वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, हमारे पास सॉल्यूशन है ना, हमारी भी तो दुकान चलनी है. तो आप जाइए तो वो दुकान वाले तो अलग हो गए. कुछ हैं पथिक कहते नहीं हमको तो ये छोटी मोटी दुकान नहीं. जैसे कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोणार्क सन टेम्पल, वहाँ पर ये अनुभव हुआ था, सब जगह होता है. तो वहाँ जब आप जा रहे हो, इस वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल अमेजिंग टेम्पल्स, और अच्छा है कि उसको टेम्पल बोल के पूरा विश्व है उसके अंदर. श्री अरविंद ने उस पर एक पोयम भी लिखी है. लेकिन जब आप जा रहे हो तो वो पैसेज है ना जिससे आप जाते हो, तो वहाँ पर बहुत सारे सर कोणार्क तो कोणार्क के रेप्लिकाज हैं. अब आप ले करके लौट जाएंगे तो असली कोणार्क नहीं देख पाएंगे. तो ये जो हाफ वे सॉल्यूशंस होते हैं ना, ये सॉल्यूशन नहीं होते हैं, कई बार हमारी प्यास को बुझा देते हैं. कोका कोला आप पीते रहोगे अमृत तक पहुंचोगे, बोलोगे अरे यार क्या. तो प्यास भी तो नजर करनी चाहिए ना, उसका अपना एक जॉय है. वैसे रॉन्ग एग्जांपल था, कोका कोला प्यास और बढ़ाती है समस्या ये है. तो वही है, संसार को आप जितना भी पी लो कितना भी मीठा हो, अंत में आपको प्यास उन्हीं की लगी हुई है. तो कुछ समय बाद बहुत जल्दी कहते हैं कि नहीं प्यास तो वहां बुझेगी. इवन हमारे कैजुअल स्टेप्स में एक कॉन्शियसनेस एक्ट करती है. और रियली इसको स्टेप्स, अगर इसको हम लिटरल भी मीनिंग लें, हम चलते हैं ना, कैसे ये होता है ऑटोमेटिक, हम गए ऑटोमेटिक नेचुरली. क्या नेचुरल है आप सोचो, ब्रेन किस तरह से और कैसे कैसे कई बार अचानक आप स्टंबल करने वाले हो, आप रुक जाते हो, या कहीं पांव रखने वाले हो आप हट जाते हो. कैजुअल स्टेप्स में प्रकृति के अंदर सारी सृष्टि में हम देखते हैं कि एक प्रज्ञा कार्य कर रही है पीछे छिपी हुई. द इनकॉन्शियंट इज द सुपर कॉन्शियंट स्लीप. भगवान ही है नींद में, कोई और नहीं है. तो क्यों नींद में चले गए भगवान, सीधी आंखें खोल करके अगर होते तो फिर तो सृष्टि नहीं होती, तो सोते रहते हैं, नींद में क्रिएट करते हैं. एन अनइंटेलिजिबल इंटेलिजेंस इन्वेंट्स क्रिएशंस पैराडॉक्स प्रोफाउंड. वैसे तो वैज्ञानिक कहते हैं कि भगवान भगवान कुछ नहीं है, या होंगे वो ठीक है कुछ लोग मानते हैं, पर रियल लाइफ तो ये है. तो अब यहां पर बता रहे हैं एन अनइंटेलिजिबल, जिसको हम जान नहीं सकते, लगता है महसूस होता है कोई तो इंटेलिजेंस है, एन अनइंटेलिजिबल इंटेलिजेंस. अब ये क्या याद आता है यहां पर, केन उपनिषद यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम. अब इसको शेरविंद ने दो शब्द में अनइंटेलिजिबल इंटेलिजेंस, जिसको आप नहीं जान सकते हो लेकिन वो अपने आप को जानती है और सृष्टि के अंदर पूरा कार्य करती है एक सूत्र में. स्पिरिचुअल थॉट इज क्रैम्ड इन मैटर्स फॉर्म्स. सुबह आप कुछ नहीं करना है, केवल कोई स्कूल नहीं जाए बच्चा, डिटेल्स की नॉलेज छोड़ दीजिए, भूल जाते हैं हम लोग. नहीं, रियल में बता रहा हूं, अगर वैसी एजुकेशन हो, आप केवल जीवन के थ्रू सीखिए, यू विल लर्न थिंग्स, यू विल लर्न मच बेटर परफॉर्म. ऑफकोर्स आप न्यूटन लॉ नहीं सीखोगे लेकिन इतना जान जाओगे हाथ से कोई चीज छूटती है तो नीचे गिरती है, आप उसको न्यूटन्स लॉ नहीं बोलोगे लेकिन उससे आप जनरलाइज करोगे कि हमारे चेतना के अंदर नीचे गिरने की टेंडेंसी है सहज रूप से, जड़ तत्व के अंदर कोई शक्ति है जो हमें पीछे खींचती है. यू विल डिस्कवर फार ग्रेटर ट्रूथ. कोई एप्पल गिरने की जरूरत नहीं है, हम भी गिरते हैं, मनुष्य भी, हर लेवल पर इंसान गिरता है क्योंकि वो फैसिलिस डिसेंशस. तो ये एक ओरिजिनल एजुकेशन तो वहीं से शुरू हुई ना. अब ये किताबें हो गई, 99% हो गया, डिजिटल एजुकेशन हो गई, लेकिन ओरिजिनल स्पिरिचुअल थॉट इज क्रैम्ड इन मैटर्स फॉर्म्स. अनसीन इट थ्रोज आउट ए डम्ब एनर्जी एंड वर्क्स ए मिरेकल बाय ए मशीन. ये सब मशीन है, ऐसा विज्ञानी कहते हैं. और क्या मशीन है, मशीन की देखो अद्भुत बात कि हार्ट धड़कना शुरू हो जाता है जब बच्चा 5 महीने का है गर्भ के अंदर. अब उसको ट्यून किया हुआ है, पता नहीं हम क्या क्या करते रहते हैं, और खींच ही लेता है 75-80 तक. कैसे चलता रहता है, आप कुछ करते हो कि हार्ट मेरा चले? सोचो अगर ध्यान किसी का जाए, अच्छा चल रहा है, रुक तो नहीं गया, चलता रहता है. सांस अगर अचानक रुक जाए, कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, अगर रात को सांस रुक जाए तो अब रुक जाए तो रुक जाए, प्रॉब्लम क्या इसमें. एक दिन रुकेगी, अब रात को रुकेगी या दिन को रुकेगी, इतनी टेंशन क्यों है भाई. रुकेगी एक दिन गति, उसका भी मैकेनिज्म है. रुक जाएगी तो आगे का रास्ते का भी मैकेनिज्म बनाया हुआ है. जब रुकेगी उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, सब बनाया हुआ है, एक पूरा पैसेज बनाया हुआ है. तो स्पिरिचुअल थॉट, ऑल हियर इज अ मिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रेरीज. हमको यहां पर सब चीजें दिन रात अच्छा बुरा इस रूप में दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसा क्यों है. अब यहां पर शेरविन बताते हैं, ऑल हियर इज ए मिस्ट्री ऑफ कॉन्ट्रेरीज, डार्कनेस ए मैजिक ऑफ सेल्फ हिडन लाइट. ओरिजिनल कलर ब्लैक होते ही नहीं है, तो विज्ञान हमें बताता है जब कोई भी रंग अपने आप को आत्मगोपन कर लेता है तो ब्लैक हो जाता है, यानी वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है बाहर. तो ऐसे कहते हैं ना ब्लैक होल, बोले ब्लैक होल में ब्लैक कलर, ब्लैक कलर नहीं, उसमें तो बहुत लाइट भरी हुई है. लाइट जैसी वहां जाती है वो अंदर में खा लेता है, लाइट को ही खाता है वो, लाइट को खा के बड़ा होता है. सोचिए आप ब्लैक होल कैसा पैराडॉक्स. देखिए वो क्या है, संकेत इसी बात का संकेत है. डार्कनेस इज ए मैजिक ऑफ सेल्फ हिडन लाइट, सफरिंग सम सीक्रेट रैप्चर्स ट्रेजिक मास्क. जा रहे ना हम लोग एक सफरिंग, ये बीमारी वो बीमारी, लेकिन किस लिए, एक सीक्रेट रैप्चर के लिए. लेकिन विज्ञान हमको रैप्चर नहीं लेने देगा, वो तो हमको भय और भय से मुक्ति, एक कंफर्ट जोन, सीक्रेट रैप्चर्स ट्रेजिक मास्क. एंड डेथ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ परपेचुअल लाइफ. मृत्यु कुछ नहीं होती है, परपेचुअल लाइफ है. जीवन नित निरंतर परिवर्तन होता रहता है, बर्थ टू डेथ, जिसको हम डेथ कहते हैं. वो तो बच्चा रहा नहीं ना जो अंतिम समय पर, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो फिर से आता है, उसके बाद मृत्यु के बाद वो अलग अलग भ्रमण करता है. तो देयर इज नो डेथ, ओनली द मोड ऑफ लाइफ इज चेंजिंग. ऑल्दो डेथ वॉक्स बिसाइड अस ऑन लाइफ्स रोड. जन्मने के साथ में हमारा एक फट्टा लग जाता है, वो होता है ना, लोग कहते हैं नंबर एक नंबर दो, तो वैसे एक जेनेटिक कोड का एक लग जाता है लेबल, मृत्यु लगाती है, चिपकाती है. जीन्स कैसी हैं इसकी, हेरिडिटी बहुत अच्छी है, अच्छा अभी 70 साल तक इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसके बाद देखेंगे. लेकिन अगर इसने अपनी लाइफस्टाइल ख़राब की, हाँ तो अपने डिजीज विजीज चले जाना. अब जेनेटिक ख़राब है, जीन्स ख़राब है, हेरिडिटी, तो 40 साल से शुरू हो जाएंगे. वो अपना पूरा उनका सिस्टम है, पूरा एक डाल देते हैं गले में. ऑल दो डेथ वॉक्स बिसाइड अस, कहाँ पर, जीवन जब शुरू होता है ना गर्भ के अंदर, वहाँ से शुरू हो जाती है ये प्रोसेस. अब ये सब क्यों होता है उसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं, वो एक अपना विषय, हेरिडिटी क्या है, कैसे है. although death walks beside us on life's road, a dim bystander at the body start. कोई नहीं सोचता है कि जन्म लेते ही कि एक दिन मृत्यु आने वाली है. वो dim bystander, पता है सबको, लेकिन आप ऐसा सच कभी बोल दो तो वो अच्छा सच नहीं है. कोई के विवाह हो रहा है, आप उसको बोल दो हाँ ये 2-4 साल की बात है कुछ क्या है ना, अजीब लगेगा कि आप कैसे दोस्त हो, मेरी 2-4 साल की खुशी भी छीन रहे हो, चाहे वो सच ही क्यों ना हो. तो उसी तरह तो कुछ ऐसे सच होते हैं जो डिम बाई स्टैंडर होनी है, लेकिन लेट इट रिमेन अ डिम बाई स्टैंडर एंड अ लास्ट जजमेंट ऑन मैंस फ्यूटाइल वर्क्स. ऐसा प्रतीत होता है कि भाई अंत में तो मृत्यु ही सत्य है. अदर इज द रिडल ऑफ इट्स एम्बिगुअस फेस. ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन ये वास्तव में जैसे स्फिंक्स होती है ना, इसलिए एम्बिगुअस फेस. श्री अरविंद ने स्फिंक्स का फेस कैसा है, एम्बिगुअस है. वो पक्षी भी है, पशु भी है, लेकिन नारी का फेस है उसका. और एम्बिगुअस क्या है, स्फिंक्स आपको मृत्यु भी देती है, स्फिंक्स आपको इमोर्टैलिटी भी देती है. इफ यू नो हु यू आर इमोर्टल. If you don't know, then the same Sphinx will kill you. So, yahan par ambiguous face. Death is a stair, a door, a stumbling stride. The soul must take to cross from birth to birth. Itna hangama kyun hai, bhai? Ek door hai. Ek stumbling stride. Ho sakta hai, ladkhada ke achanak, aray, hum kahan hai abhi? Theek hai. 10-12 दिन इधर उधर आ गया, उसके बाद आप बोलो कि जाना वहां है, हमारे परम प्रियतम वहां वेट कर रहे हैं, तो सोचने की क्या बात, इतना लोग क्यों परेशान होते हैं. When you know that your beloved is waiting and he will come to take you. अगर आपने जीवन में वो भक्ति की है तो he is not waiting somewhere there. He will come and say, बच्चे चलोगे? आप क्या बोलोगे, नहीं मेरा वो विल मैंने नहीं लिखी है. आप कहोगे जब आप आ गए चलो. सो डेथ इज क्या है, ये एक डोर है, एक स्टेयर है, एक सीढ़ी है, स्टम्बलिंग स्ट्राइड. द सोल मस्ट टेक टू क्रॉस फ्रॉम बर्थ टू बर्थ, ए ग्रेट डिफीट प्रेग्नेंट विद विक्ट्री. जो सारे मृत्यु के इधर उधर खड़े, देखा देखा देखा, ये भी मर गया, ये भी मर गया. जो मरने वाला कहता है, मरा नहीं हो, तुम्हारी मूर्ख आंखें नहीं देख पा रही हैं, आऊंगा मैं, नया देह लेकर आऊंगा, तब तक प्रयास करूंगा जब तक मैं विजित नहीं हो जाता. सो ग्रेट डिफीट प्रेग्नेंट विद विक्ट्री. A whip to lash us towards our deathless state. बनाई क्यों? अगर मृत्यु नहीं होती तो मनुष्य कहता, जिस हम प्रयास कर रहे ना कि बाहर से हम मृत्यु, हिरण्यकश्यप की तरह ऐसे भी ना मरो वैसे भी ना मरो, वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से नहीं, हाइपरटेंशन से नहीं, डायबिटीज से नहीं, तो क्या फिर मनुष्य के अंदर आता है, बहुत अच्छी बात है, हम काउच पोटेटो बन के जीवन जियेंगे, टीवी सीरियल देखेंगे, जैसे मनमानी करेंगे, बीमार होंगे तो अस्पताल है ना निकट वाला, और हमने ले लिया अपना इंश्योरेंस, और जाके साल में सालाना चेकअप कर लेंगे, पूरा आपका 5,000 रुपये का चेकअप होगा, और आप बड़े खुश होके सर्टिफिकेट लेके, जैसे बच्चे स्कूल में आते, मैंने अपना पूरा चेकअप कराया है, सब नॉर्मल है. तो मैं पूछता हूँ, सब नॉर्मल है? आप श्योर हो? हाँ सब नॉर्मल है. तो मैं पूछता हूँ कि आज नॉर्मल है? आप श्योर हो कि आपका हार्ट आज ECG नॉर्मल है, कल कुछ नहीं हो जाएगा? तो अच्छा ऐसा भी है क्या? विप टू लैश, क्योंकि मनुष्य के सर पर मृत्यु नाचती रहती है, वो अमृतत्व की प्यास उसके अंदर जागती है. बिकॉज ही हैज द सीक्रेट सेंस ऑफ इमोर्टैलिटी, इसलिए उसके अंदर प्रयास, कोई ना कोई चीज अपनी इमोर्टल कृति छोड़ना चाहता है, और कुछ नहीं तो एक संतान ही छोड़ जाए, कुछ तो हो जो मतलब कोई कृति, कोई कुछ. मैन हैज दैट टेंडेंसी, और कुछ नहीं तो धन संपत्ति, और मृत्यु के बाद उसी के आसपास कोबरा बन करके क्योंकि बताई नहीं, लास्ट डे तक हम देंगे, देखेंगे किस बेटे को देना है, उसके बाद चले गए, अब आपने दिया नहीं, झगड़ा कर रहे हैं, वहां भी आप कोबरा बन करके पास में बैठे हैं कि ये किसको देना है. तो ए विप टू लैशस, वो भी एक भगवान ने ये रूप धरा हुआ है. The inconscient world is the spirit self-made room. Inconscient, आए भगवान कहा मुझे कुछ करना है, क्या करना है, चलो let's first race to ground. अब मैं प्रारंभ करूंगा. तो inconscient क्या है, जहां भगवान ने अपने खेल के लिए एक पूरा स्थान बनाया है. इटर्नल नाइट शैडो ऑफ इटर्नल डे. जब धरती मुड़ जाती है सूर्य के विपरीत दिशा में तो शैडो हो जाती है. तो शैडो क्या है? अगेन उसका कोई अपना अस्तित्व तो नहीं है, वो तो प्रकाश के कारण है. आप प्रकाश से विमुख हो रहे हो तो शैडो बढ़ती जा रही है. नाइट इज नॉट अवर बिगनिंग नॉर अवर एंड. शी इज द डार्क मदर इन हूज वोम्ब वी हैव हिड सेफ फ्रॉम टू स्विफ्ट ए वेकिंग टू वर्ल्ड पेन. बच्चा पहले गर्भ में रहता है, बीज पहले धरती के नीचे दब जाता है. क्यों? क्योंकि अति प्रकाश को ग्रहण नहीं कर पाएगा तो वो छिपा हुआ है, भ्रूण रूप में है गर्भ में. क्यों? क्योंकि तैयार नहीं, उसको तो प्रकाश का आरोहण करना है. लेकिन धीरे धीरे, वही जो प्रारंभ में बात हो रही थी कि ही हैज टू गो थ्रू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ. वो चैलेंजेस नहीं है, वो तो हमें वास्तव में तैयार करते हैं. वही जो अभी बात हो रही थी कि वायरस क्या करती है, सारी बीमारियां देखा जाए वो चैलेंज करती है हमारे शरीर को. और शरीर को क्या करना है कि अपने अंदर से वो क्षमता निकालनी है जिससे वो रोग को रोग निरोध कर सके. और मनुष्य के शरीर के अंदर है, पर हम कहते हैं नहीं मनुष्य तो मरा हुआ है, माने जीवित मरा हुआ है. क्यों? क्योंकि बाहर से ही हम कुछ देंगे तो ठीक होगा, तो आप बाहर से उसको देते रहते हैं. एक टाइम आता है कि फिर हम डिपेंड हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर से वो क्षमता जागृत नहीं होती है. एक फुटनोट यहां देना आवश्यक है, कृपया ये प्रयास ना करें कल को आप सब दवाइयां छोड़ देंगे कह के कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि सब शरीर के अंदर है. हाँ है, ये सच है. लेकिन यहां ये भी कहा है कि धीरे 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 फ्रॉम टू स्विफ्ट वेकिंग टू वर्ल्ड पेन. अगर आपने वो कोर्स पकड़ा है तो सही कोर्स है, जहां पर आप चाहते हो कि एक दिन हम इन सब बाहरी अवलंबों से दूर हो जाए. प्रकृति के अंदर है. जब बच्चा छोटा होता है तो माँ का साया रहता है, पिता का वो रहता है. जैसे जैसे बड़ा होता है, मान लो 20 साल में भी कोई माता पिता उसको ले बेटा बैठ जा खाना खा ले, या पिता बोले नहीं बेटा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे बैंक में पैसे हैं ना, तो वो क्या बनेगा? विजय माल्या, मतलब कहने का मतलब कि वो जहाज उड़ाएगा, लेकिन पैसा उसको आदत यही है ना कि वो इस तरह से खाए. तो एक उचित सही माता पिता क्या करते हैं, पुराने समय में इसकी व्यवस्था थी देशाटन. एंड आई ऑलवेज रिकमेंड, जब बच्चा 13-14-15 साल का हो जाए तो उसको बोलो कि अकेले ट्रैवल करो, आप करो, टिकट कराओ, यू मेक श्योर दैट द कोऑर्डिनेट्स आर देयर, पर लेट द चाइल्ड ट्रैवल, मे बी विथ फ्रेंड्स इफ यू आर सो अफ्रेड. और उसके बाद वो जो सीखते हैं ना बच्चे पहली बार जब जीवन में, एक इस पर बड़ी सुंदर स्टोरी थी, मैंने मेरे लाइफ में ये ऐसे हुआ है मेरे मतलब बच्चे के साथ, कि एक बच्चे को ऐसे पिता ने टिकट वकट दे के ट्रेन में बिठाया. बच्चे ने कहा कि बड़ा एक्साइटेड भी है लेकिन उसको डर भी थोड़ा लग रहा है, पहली बार घर से बाहर निकल रहा है. तो लास्ट में पिता ने एक नोट दिया, बोला ये जब बहुत डर लगे तो इसको खोलना, नहीं तो खोला नहीं तुम इसको. तो बच्चा पहले बड़ा ये हो रहा है, लोग भी बोल रहे हैं अकेले जा रहे हो, अकेले जा रहे हो, कैसा निष्ठुर पिता है, इत्यादि इत्यादि. अब बच्चे को और लगे कि पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं. तो रात को बड़ा घबरा जाता है, कहता है मैं देख ही लूँ क्या लिखा है पिताजी ने. खोल के देखता हूँ तो पिताजी ने लिखा है अगले कंपार्टमेंट में मैं हूँ. भगवान भी ऐसे ही करते हैं ना, ऐसा लगता है, छोड़ते नहीं है. मैंने जब पहली बार हमारे बेटे को भेजा था ऐसे ही जा तो देशा, वो तो आप कहीं कुछ अरेंज नहीं करोगे, मैं पहुँचूंगा. तो वहाँ बता दिया था लेकिन किसी को कि आएंगे, और मेरा ऐसे प्रोग्राम बना था कि मैं भी चुपचाप पहुँच गया था स्टेशन. उसको कुछ पता नहीं है, स्टेशन पर मैं गुप्त रूप से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे सब पता है भोगी क्या है. तो उतर के आता है, उसको पता नहीं है, तो लेने आए हैं जो भी, तो मिलते हैं हेलो आए करके, वो बाहर निकल रहे हैं और सडनली आया अपॉन द स्टेज. 4-5 घंटे का समय था. तो आई सेड लेट मी गिव यू ए सरप्राइज कि चल तेरे बॉम्बे में घुमा के लाता हूँ. तो ये एक, इससे क्या होता है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, ये करना चाहिए. तो यहाँ पर वही है, डार्क मदर उसके वूम्ब में, सो दैट We do not wake up too swiftly to world pain. लेकिन हम उसके womb में कहां से आए? We came to her from a supernal light. बीज जो उसके नीचे चला गया कहां से आया? वृक्ष के अंदर से, वही वृक्ष जो सूर्य से पोषित हो रहा था. We came to her from a supernal light. By light we live and to the light we go. हम सूर्य पुत्र हैं, सूर्य से आए हैं। जिस दिन हम ये जान जाते हैं, हमें किसी दुर्योधन का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती है। और जब हम ये भूल जाते हैं तो महाभारत होता है। नमस्ते। और हम गलत तरफ खड़े होते हैं। वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन। वी आर चिल्ड्रन ऑफ इमॉर्टैलिटी, वी आर चिल्ड्रन ऑफ ब्लिस, वी आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट।